जय राधा माधव कुंज बिहारी जन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोप जन बन जन बन गोपी जन बन सौदानंदन रज जन रन यमुना तीरा जय यमुना तीरा बन गोप जन बन सौदानंदन जन रंजन यशोदा यमुना तीरवन यमुना तीरवन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोप जन बन जय राधा माधव कुंज बिहारी गोप जन बन जय राधा माधव गोप जन बन गोप जन बन जय गोप जन बन आज चौदानंदन जन रंजन चौदानंदन जन रन यमुना तीर बन यमुना तीर बन जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा गिरिधारी जय राधा जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी नयन पद जगन्नाथ स्वामी नयन पद गामी नयन पद जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा हरि बोल हरि बोल हरि call. And he won't let die go on him. Jaya Jaya Prabhupad, 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 Prabhupad. Jaya Muni Salila Prishna Vishnu Pada Paramahan Sabiradika Jaya Divine Nishastadana Sadasishimad Vajranar Vinda Bhakti Vedanta Swami Shri Prabhupada Maharaja Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Granthraj Srimad Bhagavatam Ki Jai Nirai Gaur Hari Premanande Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudeva. Om Namo Bhagavate Vasudeva. Narayanam Namastya. Nadam Chaiva Narottamam Devim Sarasvatim Vyasam Tato Jayam Mudirai Nashta Praeshu Bhadreshu Yam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Sloke Bhakti Bhavati Naishtaki Shri Bhagavatam Namamaskan ke 24वें अध्याय के अंतर्गत हम लोग 34 नंबर श्लोक का पाठ करेंगे, क्योंकि बीच में बहुत सारे श्लोकों का तात्पर्य नहीं लिखा प्रभुपाद जी ने, इसलिए हम लोग 24वें अध्याय के 34वें श्लोक का पाठ करेंगे. Amogham Devasanda Devasandarsham Adade Tvai Cha Atmajam Yuni Yatha Natushet Karta Aham Te Sumadhyane Amogham Deva Sandarsham Adade Tvaichatmajam Adade Tvaichatmajam Yuniriyatana Dusheta Karta Aham Te Sumadhyane Amogham Deva Sandarsham Adade Tvaichatmajam Yo Niryathana Dusheta Karta Aham Te Sumadhyame Amogham Deva Sandarsham Adade Tvaichatmajam Yo Niryathana Dusheta Karta Aham Te Sumadhyame Amogham Deva Sandarsham Adade Tvaichatmajam योनिधानेषु मध्यमे अमोघम दैव सन्दर्शम् आदधे द्वयजात्मनि अमोघम व्यर्थ न होने वाले देव दर्शनम देवताओं के दर्शन आज दे मैं दूंगा त्वयी तुमको च ही आत्मजम एक पुत्र योनि ही योनि मार्ग यथा जिस तरह न नहीं दूषित दूषित हो करता व्यवस्था करूंगा अहम मैं ते तुम्हारी सुमध्य में हे सुंदरी अनुवाद तात्पर्य श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद महाराज के द्वारा सूर्यदेव ने कहा कि सुंदरी प्रथा देवताओं से तुम्हारी भेंट कभी व्यर्थ नहीं जा सकती अतः मैं तुम्हारे गर्भ में विजय स्थापित करता हूँ इससे तुम एक पुत्र उत्पन्न कर सको मैं तुम्हारे कौमार्य को अक्षत रखने की व्यवस्था कर दूंगा क्योंकि तुम अब भी अविवाहिता हो तात्पर्य वैदिक सभ्यता के अनुसार यदि विवाह के पूर्व कोई लड़की शिशु को जन्म दे तो उसके साथ कोई विवाह नहीं करता इसलिए जब सूर्यदेव ने पृथा के समक्ष उपस्थित होकर उसे शिशु देना चाहा तो पृथा को उलझन हुई क्योंकि वह कुमारी थी किंतु सूर्यदेव ने उसके कौमार्य को अक्षत रखने के लिए उसे ऐसा शिशु देने की व्यवस्था की जो कान से उत्पन्न हुआ इसलिए इसका नाम कर्ण पड़ा प्रथा प्रथा है कि लड़की अक्षत योनि रज विवाहित हो अर्थात उसका कौमार्य भंग न हो विवाह के पूर्व कुमारी को शिशु उत्पन्न नहीं करना चाहिए मम ज्ञान तिमिरन्धस् ज्ञानांजन शलाकय चक्षुर्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे श्री चैतन्य मनोहविष्टं स्थापितं येन भूतले त्वयं रूपकदामयम् ददातीशपदं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुर्नमश्नवंश श्रीरूपम साग्रजातम सहगण रघुनाथन्वितं तं सजीव साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधाकृष्णपादां सहगणललिता शिवशाखं मुखं कदौ पिवाचामं पङ्गुमलं गजद्गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमयेतं सुरतभङ्गौर् मम मन्दमते वत्सपदाम्बौजो श्रीराधामदनमो वाञ्छाकल्पतरुभ्यस्य कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो श्रीकृष्णचैतन्य नमो नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे कृष्ण। तो नित्य प्रति हम लोग श्रीमद् भागवतम का श्रवण करते आ रहे हैं और अभी हमारा जो पाठ है वो पाठ 23वें अध्याय में था, लेकिन श्रील प्रभुपाद महाराज के तात्पर्य नहीं होने के कारण हम लोग उन 23वें अध्याय को पूर्ण किए बिना सीधा इन 24 के 34वें श्लोक में पाठ करते हैं। लेकिन उसका अनुक्रम हम सब लोग कुछ देखते हुए चलेंगे, क्योंकि नहीं तो क्या होगा, लोगों के चित्त में ये कथा स्थिर नहीं होगी। इसलिए बहुत आवश्यक है कि हम लोग इस कथा का उपक के रूप में उन पाठ को देखेंगे, उनकी व्याख्या नहीं देखेंगे, व्याख्या इस श्लोक की जाएगी जो श्रील प्रभुपाद महाराज ने किया है। तो ऐसा इसलिए हुआ, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ केवल उन वंश वर्णन किया गया है सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा, और उस वंश वर्णन यद्यपि अत्यंत आवश्यक है लेकिन और उसका तात्पर्य भी जरूरी है, लेकिन इतने सारे राजाओं का उन चरित्र जो इसमें वर्णित हुआ है तो उन सब का चरित्र लिखने के लिए जाए प्रभुपाद जी बहुत बड़ा ग्रंथ हो सकता है। और एक तो कलयुगी जीव आलसी जीव अध्यात्म में और इतना बड़े ग्रंथ को देख करके हैरान हो जाएगा, बोला नहीं पाठ करना। इसलिए शॉर्ट में लेने के लिए प्रभुपाद जी ने बीच में तात्पर्य नहीं दिया है, लेकिन खास करके हम लोग इसको पाते हैं उन 23वें अध्याय के 19वें श्लोक में ये बताया गया है
कि वनयामि महापुण्यम सर्व पाप हरम निणाम यदुर्वंशम नर सुत्वा सर्व पापे प्रमुच्यते। श्रीमद गोस्वामी पाद दुष्यंत महाराज के वंशज का वो वर्णन किया, और उनके बाद में जो यदु महाराज के वंश का वर्णन कर रहे हैं तो उससे पहले बहुत सुंदर श्लोक बोलते हैं कि मैं उन महत्वपूर्ण स्वरूप जो समस्त पापों का हरण करने वाला ये प्रसंग, और वो प्रसंग क्या है, यदु वंश के जितने राजा हुए उन राजाओं का चरित्र, श्रुत्वा सर्वे पापे प्रमुच्यते। इस यदुवंश में आने वाले राजाओं का ऐसा अद्भुत चरित्र है कि उनको श्रवण करने मात्र से व्यक्ति समस्त पापों से उनके चित्त का शोधन होता है, परिशुद्ध होता है। और हम लोग को चाहिए कि हमारे मन के मल का धुलाई हो, नहीं, क्योंकि चित्त जब तक अशुद्ध रहता है तब तक उनको उन आध्यात्मिक प्रवृत्ति में प्रवृत्त करना ये बहुत कठिनाई है। इसलिए व्यक्ति निद्रा में चला जाता है, क्यों, क्योंकि उनका चित्त सत्व में नहीं है, और सत्व में इसलिए नहीं रहता है क्योंकि हमारे किए हुए पाप ये अध्यात्म श्रवण के टाइम या उन आध्यात्मिक क्रिया करने के टाइम, भक्ति संपन्न करने के टाइम, श्रवण कीर्तन स्मरण जप इत्यादि, तो उसी समय वो चढ़ बैठता है, वो पाप वो नहीं देता है। इसलिए ऐसा व्यवस्था जान पड़ता है कि ये जो पुण्यवान राजाओं के चरित्र है वो चरित्र श्रवण से व्यक्ति के चित्त का मल हटता रहेगा, और परम पुण्यमय भगवान की वो कथा श्रवण की योग्यता प्राप्त करता रहेगा। इसलिए उन वंश वर्णन इत्यादि श्रीमद् भागवतम में रखा गया है। और एक लोग कहते हैं आगे के, यत्र अवतीर्णो भगवान परमात्मा नराकृति यदो सहस्त्र जित कोष्टा नलो रिपुर इति श्रुता। तो कहते हैं कि जिस वंश में श्री भगवान उन नराकृति को प्राप्त हुए, या जिस वंश को आधार बना करके, या जिस वंश को पवित्र करने के लिए श्री भगवान परमात्मा मनुष्य रूप लेकर के हम सबके बीच में आए थे, तो ऐसे उन यदुकुल का पावन जस व्यक्ति जितना भी गाएगा उतना वो पवित्र होता जाएगा, उसमें कोई शंका नहीं है, निशंक वस्तु है। इसलिए श्रीमद् भागवतम में इस वंशावली को रखा गया है। इनके अंतर्गत हम लोग अंतिम पाठ किए थे इसी अध्याय का, जो चंद्रगुप्त प्रभु ने किया, वो था उस वंशावली के अंतर्गत 29 बिंदु नामक एक जो महान राजा हुए उनका चरित्र हम लोग श्रवण कर रहे थे। उन्होंने उनके चरित्र को श्रवण कराया था। कहते सस्यबिंदु महायोगी महाभागो महान अभूत, इसके 31 श्लोक का पाठ किए थे प्रभु जी। तो चतुर्दश महारत्न चक्रवर्ती अपराजिता, उन सस्यबिंदु के विषय में कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कि वह एक महायोगी था। राजा तो था ही, लेकिन राजा प्लस योगी ऋषि, वो एक बहुत योगी था। और महाभाग, उनके भाग्य की कोई सीमा नहीं थी, असीम भाग्य था उनका। और वो इतना महान हुआ कि जो 14 रत्नों को अपने पास संजो करके रखते थे, ये 14 रत्नों के विषय में श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, और प्रभु जी कल इनको बता रहे थे। तो ये ये राजा लोग इतने महान हो गए, अब इनकी चर्चा करने के लिए बैठेंगे श्रीमद् भागवतम में उनका पर्पट लिखने के लिए कि शश बिंदु को इनका वंश वर्णन किया जाए, शश बिंदु का अकेले का है तो वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक तो उनको 10,000 पत्नी थी, पत्नी में सहस्त्राणाम, तस्य पत्नी सहस्त्रा, 10,000 पत्नी थी और उन एक एक पत्नी से कहते उन महाजशस्वी शश बिंदु ने एक एक लाख बच्चे उत्पन्न किए। लिखा 10,00,000 सहस्त्राणि पुत्राणाम तासु अजिजनत, बताइए उनके 1 अरब पुत्र थे, 1 अरब। अब वर्णन कीजिए वंशावली का। तो ये बात है, इसलिए इसमें परपट प्रभुपाद जी ने नहीं दिया है, बहुत सारा वर्णन हो जाएगा और ग्रंथ का ग्रंथ उसी में रह जाएगा और इसी के बीच कृष्ण कथा रह जाएगी, है कि नहीं। इसलिए मोटे रूप में इनका वर्णन करके प्रभुपाद जी निकलते, कभी कभी जरूरी जहां पर है वहां पर थोड़ा सा वो तात्पर्य देते हैं श्लोकों का। तो इस बात में कहते तेषाम तु सत प्रधानम पुथ सर्वस्व आत्मज धर्मो ना नाम उष्ण तस् हयमेध स्पष्ट हयमेध राट तस् हयमेध कहते हयमेध तस्त, कहते कि उनके जो ये 1 अरब पुत्र थे उनका नाम भी नहीं गिना है, प्रधान 6 का भी नहीं, उसमें 6 प्रधान ऐसा कहा और 2 का नाम गिनाया। तो उन 2 में कौन है, पुथुसभा और पुथु कीर्ति, 6 प्रधान था, उन 6 में से ये 2 का नाम गिना करके उन्होंने कहा कि ये उनका आत्मज धर्म हुआ और उनका उष्ण, उष्णा नामक एक महान राजा हो गए और उनकी कीर्ति को थोड़ा सा 2 शब्दों में गाया गया। लेकिन याद रहे श्रीमद् भागवतम में नाम आना ये यहां कौन सा बुक रहता है, ग्रीनिट बुक है, ग्रीनिट बुक इसके सामने ये भागवतम के सामने कुछ नहीं, यहां तो थर्ड क्लास व्यक्तियों को वर्णन किया जाता है, एकदम गंदे चरित्र के लोग कुछ एक आध बात सीख लिए कहीं से तो उन 1 बात के लिए बहुत यशस्वी करके उनको चढ़ा दिया जाता है, पेपर सेपर सब यही है, क्योंकि कलयुग ने लोगों का बुद्धि का हरण कर लिया है। और नहीं तो गिनीज बुक में सबसे पहले शश बिंदु का नाम आना चाहिए, शश बिंदु क्यों, क्योंकि इतनी अकेले की इतनी प्रजा, क्यों नहीं, वो महायोगी था, लोग को थोड़ा शंका होता है कि इतना प्रजा, और वो योगी था, योगी और एक रूप नहीं, वो 500 रूप रख सकते हैं योगी लोग, और वो अपनी शक्ति से बच्चे उत्पन्न करते हैं, योगियों को तो क्या है शक्ति मात्र, वो सृष्टि इत्यादि शक्ति उनके पास रहती है, सिद्धि रहती है तो वो सिद्धि से वो सृष्टि करते हैं, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जिन्होंने भागवतम नहीं पढ़ा है वो गिनीज बुक को पढ़ करके आश्चर्यचकित होते हैं, क्यों रे रे आश्चर्य का बात, ये तो बड़ा आश्चर्य हुआ, आश्चर्य श्रीमद् भागवतम में देखने के लिए जाए कितना बड़ा आश्चर्य है श्रीमद् भागवतम, इसका एक एक आश्चर्यजनक है, और उनमें किसका नाम आना, नाम भर आ जाए तो वो भी बहुत बड़ा यशस्वी होगा, तो नाम आएगा और उनके विषय में 2 शब्द बोला जाए तब तो क्या कहना, जैसे यहां इनके लिए बोला गया उष्णा के लिए, बोलते हैं वो उष्णा है, उन्होंने 100 अश्वमेध यज्ञ किया था। हम लोग देखते हैं कलयुग मतलब कलयुग में 3 अश्वमेध यज्ञ युधिष्ठिर महाराज ने किया था, और बड़े धर्मात्मा के रूप में उनका नाम है युधिष्ठिर महाराज का है? और तीन अश्वमेध यज्ञ वो भी भान सहायक हुए तब हुआ, अन्यथा शक्य नहीं था युधिष्ठिर महाराज के लिए भी। युधिष्ठिर महाराज ने रखा था केवल भगवान को बोले थे ये कर हम आपका अश्वमेध के द्वारा पूजन करें तो थोड़ा ठीक रहेगा। बोले ठीक है हो जाए, भगवान ने परमिशन दिया था, ठीक है करो तुम हमारे भक्त हो तुम्हारा यश बढ़ना चाहिए। बाकी ये कलयुग में कोई अश्वमेध क्या कोई एक भी यज्ञ ठीक से कलयुग करने नहीं दे रहा है, कोई भी यज्ञ करने के लिए कोई व्यक्ति जाता है उनसे पहले वस्तु को दूषित करके रख दिया है और उन यज्ञ में से यज्ञ का जो सार है वो सार भाग को उन्होंने निकाल लिया है। अब जाइए कीजिए अथोथी भूसी को कूटिए। कोई व्यक्ति यज्ञ का फल निकालना चाहते तो थोथी भूसी कूट रहा है क्योंकि कलयुग ने पहले से उसमें तंदुर इत्यादि निकाल दिया, अब भूसी को कूटने से क्या लाभ है, ऐसा कर दिया। इसलिए कलयुग न योग यज्ञ न ज्ञान इसमें कुछ नहीं है, इन कुछ में सार नहीं है। कहने का अर्थ सार है संकीर्तन यज्ञ जजंती सुमेधस, सार वस्तु लिखा है। इन कलयुग में उन संकीर्तन यज्ञ के द्वारा बुद्धिमान व्यक्ति भगवान गौरांग देव का अर्चन करेगा, ये विधि है। कृष्ण वर्णम तिश्रा कृष्ण सांगो पांगास्त पास्तम, और वो भगवान कौन है, कृष्ण वर्णम, सतत उनके मुख से कृष्ण कृष्ण कीर्तन रहेगा उनके मुख में रहेगा। और सांगो पांगास्त पार्थनम सुंदर अंगोपांग, एक पार्षद का कार्य कर रहे थे और उनके हजारों पार्षद नाम की महिमा का उपचार प्रसार किए थे। तो ऐसे भगवान को कलयुग की बुद्धिमान जनता पूजित करेगी यज्ञों के द्वारा, और यज्ञ होगा संकीर्तनम संकीर्तन यज्ञ। तो यहां बताया गया कि उसना ने 100 अश्वमेध यज्ञ किए थे, एक दो नहीं 100, और 177 यज्ञ किए थे भरत ने, नहीं दुष्यंत पुत्र भरत ने 177 यज्ञ किए थे। और सबसे टॉप में वही है, महान व्यक्तित्व के रूप में वही है। भरत के कहते हैं कोई राजा उनकी उसी प्रकार अपनी तुलना उनके साथ नहीं करते जैसे एक मक्खी गरुड़ की तुलना, वो मक्खी करेगी अपनी तुलना कि मैं गरुड़ के साथ चलूंगी, ऐसा लिखा है। दुष्यंत पुत्र भरत के विषय में, भरत दो तीन हो गए इसलिए दुष्यंत पुत्र नाम देना पड़ता है। तो वो दुष्यंत पुत्र भरत का बहुत नाम था, बहुत क्या थे भगवान के अंश विशेष थे, कला विशेष थे, तो इसके कारण उन्होंने इतने सारे अश्वमेध यज्ञ करके अपनी कीर्ति को स्थापित किया था। उनके बाद में कोई और उनके पहले भी कोई इतना अश्वमेध यज्ञ तो 100 किया, तो यहां एक दो शब्द लिख दिए गए उनके लिए। अब बताइए ये बात वो बुक में आना चाहिए कि नहीं, ये 100 करके गए अभी है। लेकिन जो इसका महात्मा ही जानने वाली प्रजा ही नहीं है, इसलिए जो जिसका महात्मा ही जानती है उसका नाम आता है उसमें। वो क्रिकेट को छग्गे पंचे को जानती है तो उसी को खेलने वाले व्यक्ति का नाम का महात्मा उनके हृदय में, और क्या है? ये कलयुग की जनता के हृदय में बहुत बहुत वस्तु का महात्मा है और जो थर्ड क्लास चीजों का महिमा भरा हुआ है, इसलिए वो लोग इसी प्रकार का किताब निकाल कर उन आश्चर्यजनक वस्तु को लिखते आते हैं। लेकिन वो जब उनके हाथ में इन ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी के द्वारा लिखा हुआ भागवतम पर जाएगा तो जो जिस जिस के हाथ में पड़ गया तो वो लोग उन बुक के सामने तक नहीं देखते हैं। वो देखेगा भी नहीं उस बुक के सामने, क्यों देखने के लिए जाएगा? अत्यंत विचित्र विचित्र कथाएं इस श्रीमद् भागवतम में है। कोई क्यों जाएगा दूसरी जगह? ये तो जिनको नहीं मिला है वो लोग इतर कथा में टेलीविजन के सामने बैठ जाते हैं आंखें फोड़ने के लिए, वो लोग बैठ जाते हैं जिनका रुचि इसमें नहीं है। बाकी क्यों ये देखेगा? नहीं देखने लायक, जो जिनसे चित्त गंदा होगा। और यहां लिखा है कि जिनको पढ़ने मात्र से उन सत्य शुद्ध होगा, जो सत्य शुद्धि के लिए बहुत तपस्या करने का जरूरत है, बहुत दान बहुत धर्म पुण्य व्यक्ति करता है, उनके फल रूप में चित्त शुद्धि लिखा गया है। और तत्पश्चात ज्ञान प्राप्ति, तत् वैराग्य, उनके बाद मोक्ष अनुक्रम से। और मोक्ष चतुर्थ पुरुषार्थ, लेकिन यहां पंचम पुरुषार्थ भक्ति का वर्णन हुआ है। उनके ऊपर सबसे टॉप की वस्तु भगवान की भक्ति है। तो इसमें अनेक अनेक उन राजाओं का चरित्र है। तो इसमें कहते हैं कि उन उष्णा के पुत्र के नाते वो कहते तत्सुतो रुचिक तस्य पंचासन आत्मजः सुनो और पुरुजित रुक्मक रुक्मेशु पृथु जा अमग संगीता। तो कहते हैं उनके उष्णा का पुत्र हुआ रुचिक और रुचिक का पुत्र हुआ पांच। उन पांच पुत्र कहते पुरुजित रुक्म रुक्मीशु पृथु और जामक। उन जामक के विषय में दो तीन श्लोक करके ये अध्याय समाप्त करते हैं, तीन चार श्लोक में उनको देख लेते हैं। और कहते हैं जामक जामगस तो अप्रजो अपि अन्यम भार्यम सेव्या पतिर्भयात् न अन्विच्छन्द शत्रु भवनाद भोज्याम कन्याम महा ऋषि। कहते हैं वो जामक को कोई संतान नहीं था। क्यों संतान नहीं था? बोलते उनकी जो पत्नी सेव्या थी वो बांझ थी, मरुतिमती नहीं होती थी, बांझ थी। तन्मंदा होने के कारण पुत्र तो दूसरा कर ले, बोला दूसरा नहीं, क्योंकि अपनी पत्नी से बहुत डरते थे। हे राजा, बड़े बड़े राजाओं को जीत करके वो आते थे, लेकिन पत्नी का बहुत भय बना रहता था उनको, सेव्या से वो बहुत भयभीत थे। तो बोले सेव्या पतिर भयात भाज्यम न अविंदन, उन्होंने दूसरा पत्नी नहीं किया। और एक दिन एक राजा के साथ युद्ध में उन राजा को जीत लिया, तो वहां से एक भोज्या नामक एक कन्या को लेकर के आए और अपने रथ पर को लेकर के उन कन्या को आए। तो उनकी जो पत्नी थी तो उनको देखकर कहते रथाम ताम निरीक्षाम सेव्या पतिम अमर्षिता। तो जैसे वो घर आए और विजय करके, तो एक लड़की उनके साथ आई हुई देखा, भोज्या नामक लड़की। तो वो उनको देख करके अत्यंत उनके ईर्ष्या भाव में उनके पति को बोलने लगी, के यम कुहक का बोलते हैं, अरे कुहक धोखेबाज। देखिए बड़े बड़े राजा गाली खाते हैं, आश्चर्य का बात है। स्त्रियों का के यम कुहक मस्तानम रतम आरोपित आरोपिती थी भाई, अरे धोखेबाज, ये मेरे स्थान पर ये दूसरी को लेकर के क्यों आया, ये कौन बैठी हुई है? प्रश्न किया। ते वेक को ये कौन है, के यम ये कौन बैठी है? तब बोलते स्नुषा तब एति अभिहित स्मयंती पतिम अब्रवित। उन्होंने कहा देखो ये तो तुम्हारी पुत्रवधु को मैं लाया हूं। तो वो हंसने लगी, पुत्रवधु जब बोला तो कहते हैं हंस करके वो उनके पति को बोली कि देखो भाई अहम वंद्या पत्निश्च स्नुषा में युज्यते कथम और जनिष्यति यम अदागी तस्य यम उपयुज्यते। वो कहते देखो एक तो मैं वंद्या हूं और मेरी कहते उन असपत्नी है नहीं, मेरी सौख कोई दूसरी है नहीं, تو تمہارے ڈر کے مارے وواہ نہیں کیا ہے, اتہ تو کوئی میری شوق ہے نہیں, تو یہ کس کے پتر کی بہو بنے گی یہ ذرا بتاؤ, کوئی دوسرے کی ہوئی ہے کیا میرے بھائی کے کارن کہ اس کے لیے تم کن کر کے آئے ہو؟ جنیش سے جم راگ کی تو کون تمہارے لیے کون رانی پتر جنے گی, میں ہی تو ایک ہوں کہ تم ان کے لیے کنیا لائے ہو. تو کہتے ہیں انم بودن تدویش دیوا پتر ایوچ شبیا, انہوں نے کہا دیکھو رانی تم ہی پتر جنو گی, اور جب ایسا کہا تو وہ وشو دیو کا بہت بڑا پوجک تھا اور پتروں کا پوجک تھا چامک, تو ان کو کہتے کہتے انم مودت تد وشو دیو پتر ایوچ, اور جب ان کا یہ بات سنا تو وشو دیوتا نے تتھاستو چالو کیا بولنا, ایسا ہی ہو جیسا تم کہہ رہے ہو, اور پتر لوگ نے خوب آشیرواد دیا, شدیا گربم ادادات کالے کمارم سو شوے شبھم, اور ان کے آشیرواد سے وشو دیوتاؤں کے اور پتر کے آشیرواد سے وہ شدیا نے گرب دھارن کیا اور پھر ان سے ایک سندر کمار کو جنم دیا, اور سب ودربھ اتی پروکت اوپے میں سوشام ستی, اور وہ ودربھ نامک لڑکا وہ لڑکے نے پھر اسی کنیا سے وواہ کیا اور ان کا ونش چلا. ان کے ونش کا ورنن سے پہلے ادھیائے سماپت ہوتا ہے 24واں, اور ان کے بعد ورنن پرام کے سیسک واچ سچام ودربو اجنیت پتر نامنا کشکرتھو اتتم روم پادم چ ودربھ کل نندنم. سکھدیو گوسوامی پاد کہتے ہیں کہ ان بھجا سے, ان بھجا کے گرب سے ان ودربھ نے دو پتر کو جنم دیا, کرشن اور تسو, یہ دو ان کے پتر ہوئے, نہیں اور تین پتر, اور تیتی روم پادم اور تیسرا ہوا روم پاد. لیکن کہتے ہیں کہ یہ روم پاد پورے ودربھ کل کو آنند دینے والے ہوئے, چونکہ ان کے دوارا ایسا کچھ کاریہ ہوا تھا, اس کا ورنن سیمت بھاگوت میں آتا ہے. یہ ہے جنک مہاراج کا متر, جنک کا متر کس کا متر تھا؟ روم پاد, ان کا بڑا متر رہا, اور ان کے راجیہ میں کچھ برسا نہیں ہوئی تھی 12 سال تک. وہ انگراج تھا, ہاں روم پاد تھا نا, یہی روم پاد ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ ودربھ کل نندنم, یہ کون, یہ راجا کس کل کے تھے؟ انگ دیش کا نا, تو ودربھ کو ہی انگ دیش بولتے ہیں. ودربھ کون, ودربھ دوسرا ہے, انگ دیش دوسرا ہے. ودربھ تو کل لکھا ہے, دیش نہیں لکھا ہے, لیکن ان ودربھ پورے کل کو نندن کرنے والے, ان کو آنندت کرنے والے یہ روم پاد ہوئے. خیر جو بھی روم پاد ہو سو تو ابرو پروپا جن پر نہیں لکھا ہے, اس لیے میں جو انمان لگا کر بول رہا ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, کوئی ایک دم ایگزیکٹ نہیں سمجھنا چاہیے اس کو ڈکٹو کر کے. یہی تو روم پاد میں 23, یہ میں 24 کو پڑھ رہا ہوں, وہ گیا ان کا ہو گیا, تو ان کا کتھا کیا تھا کچھ, ان کے متر تھے نا, ہاں, اور یہ کسنگی کو لایا تھا, یگ کرایا تھا, ہاں ابھی برابر یہی ہے, جو 23 ادھیائے میں ان کا کتھا بھی تھا. تو یہی کہتے ہیں ان روم پاد ببر کتر جایت اور اوشک تت تچے چیدی ادھیان روپا, اور کہتے ہیں کہ اسی پرکار वो रोमपाद का पुत्र हुआ बबरू, और जिससे कृति की उत्पत्ति हुई, और कृति का पुत्र उषिक हुआ, और उषिक का पुत्र चेदी। तो चेदीराज इत्यादि, उन चेदीराज का पिता, शिशुपाल का पिता इत्यादि का उससे जन्म हुआ। और तत्पश्चात ऐसे बौद्ध वंशावली का वर्णन है, उसमें हम जाएंगे नहीं, क्योंकि ये कुछ अद्भुत जो घटना का वर्णन श्री प्रभुपाद महाराज तात्पर्य रूप में थोड़ा सा दिया है, उनमें तुरंत जाएंगे, क्योंकि 10 मिनट बाकी रह गया है। एवं इसलिए कहते हैं ना, वंशावली में ज्यादा जाने से वो इधर उधर का बात। वस्तुतः एक बहुत सुंदर श्लोक इसके विषय में श्रीमद् भागवतम 12 स्कंद में मिलता है, उनको देख करके हम इसमें जाते हैं। बहुत सुंदर श्लोक है 10वें स्कंद में, सॉरी द्वादश स्कंद में। उन द्वादश स्कंद अंतर्गत सुखदेव गोस्वामी पाद ने तब इन कथा को पूरा किया भागवतम का। उनके बाद में वो कहते हैं कि कथा इमांस्ते कथिता महिष्याम वित्ताय लोकेषु यशः परिवेशाम विज्ञान वैराग्य विवक्षया विभो वचो वीर विभूति न तु पारमार्थम। बहुत सुंदर श्लोक है ये। सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कि इस पृथ्वी पर बड़े बड़े राजा अपने यश का विस्तार करके, अपनी वाणी इत्यादि का विस्तार करके बहुत लोग चले गए। वो कहते हैं कि ये सब पुरानी बातें हो गई, बहुत राजा आकर के चले गए, अपने यश का विस्तार किया, लेकिन विज्ञान वैराग्य विवस्था विभो, और मैंने जो ये बताया ये तुम्हारे वैराग्य के लिए और विज्ञान के लिए बताया। ये सब कथा विज्ञान का अर्थ, जो जो राजा भगवान के भक्त हुए वो अनुसरणीय चरित्र है, जैसे अम्बरीश इत्यादि, हमारे आचार्य लोग इसको लिखते हैं विज्ञानम, जो अनुसरणीय जीवों के लिए है जिनका अनुकरण, और वैराग्य विवक्षया, वैराग्य उत्पन्न करने के लिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए। ये तो क्योंकि भगवान का कौन कौन भजन किया, उनके मार्ग का अनुगमन करते हो व्यक्ति भगवान की भक्ति करे है? और वैराग्य, इतने बड़े बड़े राजा जिसके 1 अरब पुत्र हुए थे और बहुत बड़ा योगी था, फिर भी मर गया। इसलिए चित्त में वैराग्य स्थापित करने के लिए कोई व्यक्ति जगत की कोई वस्तु के पीछे आकृष्ट न हो, वैराग्य विवक्षया ये है कि व्यक्ति का चित्त वैराग्य में स्थिर। मैं कहते वैराग्य में स्थिरता के लिए मैंने इन कथाओं को रखा और ज्ञान के लिए। देखिए बाकी कहते हैं कि वचोर विभूति, वो केवल वाणी का चर्चा है, न तो परमार्थम, उसमें परमार्थ वस्तु कुछ नहीं है, ऐसा कहते हैं। चक्रवर्ती ठाकुर बहुत सुंदर अर्थ लिया है इसका। वो कहते हैं कि वचोर विभूति, बोलते वचोर विभूति न, वो केवल वाणी का विभूति नहीं है, लेकिन तू माने लेकिन परमार्थम, परमार्थ भूत है। सिद्ध साई बात ये संधि विच्छेद को कुछ दूसरी तरीके से किया और ये आचार्य दूसरी तरीके, एक शब्द का संधि विच्छेद से पूरा अर्थ पलट जाता है, बिल्कुल विरुद्ध अर्थ हो जाता है। सिद्ध साई बात कहते हैं कि केवल एक वचो विभूति, ये वाणी का ऐश्वर्य मात्र है, उनमें परमार्थ वस्तु नहीं है। और परमार्थ वस्तु क्या है, यद उत्तम श्लोक गुणानुवर्णम, दूसरे श्लोक में कहते हैं। ऐसा करके सिद्ध साई बात दूसरे श्लोक के साथ अन्वय किए हैं, लेकिन चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि केवल वाणी का विलास नहीं है, परम परमार्थ भूत ये सारी कथाएं हैं, अगर नहीं होती थी तो भागवतम में क्यों है। बहुत सुंदर बात है, चक्रवर्ती ठाकुर का जो टीका है वो अद्भुत टीका है, और कृपा करके किसी ने बहुत सुंदर उनका अनुवाद किया है उन टीका का, उनको पाठ करना चाहिए, इंग्लिश में है लेकिन हिंदी में नहीं आया है अभी तक। तो उन टीका का संजो करके भक्तों को रखना चाहिए, क्योंकि इतनी अद्भुत टीका है, वो सारी बात एक एक श्लोक को एकदम स्पष्ट समझते हैं। देखो जैसे सिद्धर स्वामी पाद से भी स्पष्ट उन श्लोक को क्लियर करते हैं, वो केवल वाणी विलास लिखा है, तो वाणी का विलास मात्र है, परमार्थ न तो परमार्थम, उसमें परमार्थ तत्व तो नहीं है, لیکن کہتے ہیں یہ وچور وبھوتی نہ انہوں نے جوائنٹ کیا نہ کو وہاں, یہ کیول وانی کا ولاس نہیں ہے کنتو پارمارتھم یہ پرمارتھ بھوت ہے. اچھا کیا پرمارتھ بھوت ہے؟ ویکتی کا سداچار کا نرمان ہوتا ہے, بہت آوشک ہوتا ہے. سداچاری ویکتی شیگراتی شیگر بھگوت بھجن میں آگے بڑھتے ہیں, اور یہاں سداچاری راجاؤں کا چرتر دیا گیا ہے. ان چرتر کا سمرن کر کے ویکتی سداچار میں استھت ہوتا ہے. سداچار بھکتی نہیں ہے, لیکن سداچاری ویکتی جو ہوتا ہے ان کی بھکتی دنانو دن بڑھتی ہے. بھکت لوگ کئی بار پوچھتے ہیں کہ ہمارا بھجن پہلے کی بھانتی ابھی شیتل ہو گیا ہے, تو اس میں کچھ سداچار وہ وشنو سداچار اتیادی ہے. تو بڑے بڑے راجا ہوئے, ان راجا ہوتے ہوئے بھی کیا سداچار کا پالن کیا, جیسے ان میں سامرتھ ہوتے ہوئے بھی امبریش مہاراج کے پاس سامرتھ تھا کہ وہ کرتیا کو وہ خود جلا سکتے تھے, بھگوان کے بھکت تھے, لیکن نہ تو کرتیا کو جلایا اور نہ بھائی بھی دھو کر ایک پیر پیچھے چلے اور نہ تو بھگوان کو پرارتھنا کیا. دیکھیے سداچار, دیکھیے وشنو سداچار. جن کو کیول انن بھکتی چاہیے, انتا کیا ہے؟ کرشن کے سکھم, اپنے سکھ کا جہاں تھوڑا سا بھی ایک سنکلپ بھی جہاں نہیں جٹتا, سنکلپ چھوڑ دیجیے وہ من میں نہیں آتا, اپنے سکھ کرشن کے سکھ کے لیے جو بھکتی کرتے ہیں یہ سداچار ہے. یہاں وہ بھگوان کو یہ نہیں کہے کہ ذرا بچائیے ہم کو, یہ تو بھگوان نے پہلے سے سدرشن چکر رکھا تھا, وہ جا کر کے کرتیا کو اکشار کر کے کھدیڑا ان مہان یوگی کو درواسا جی کو وہاں سے, اور پورے برہمان کا چکر کٹوایا. لیکن سداچار کیا ہے ایک وشنو کا؟ اپنے جیون بچانے کی بھی پرارتھنا نہیں, کیولا بھکتی یا آنند بھکتی کرشن کے سکھم, کیول کرشن کے سکھ کے لیے کاریہ کرنا, بھکتی کرنا, بہت سندر سداچار ہے کہ نہیں؟ تو چکر ٹھاکر اس لیے کہتے ہیں کہ نہ وچو بھیر تو پارمارتھم, کہتے ہیں یہ کیول وانی کا ولاس نہیں ہے, یہ پرمارتھ ہوتا ہے. کیونکہ جہاں پر سندر وشنو تھا سیکھنے کو ملتے, بڑے بڑے راجا تھے, ایسے راجاؤں کا ادبھت چریتر اور ایسے یوگیوں کا چریتر بھی دیا گیا ہے جو پیچھے سے بھکت بن گئے. مہا سداچار, یہ سب سداچار. سداچار نام سے ہمیں وشنو سداچار کا چار نیم پالن سداچار ہو دوسری بات ہے, ایک بھن ہے, لیکن وشنو سداچار کون بھکتی کتنا ایشوریہ ہونے کے بعد بھی بھجن پکڑتا ہے, اور ہماری بدھی روز گالی سننے کے بعد بھی ویراگیہ کو پراپت نہیں ہو رہی ہے. تو ایسے راجاؤں کا چرتر سننے ماتر سے ویکتی کا چت ویراگیہ میں استھت ہوتا ہے. ارے رے اتنا سب کچھ تھا لیکن بھگوان کے لیے تیاگا, تو بھگوان میں کیا اتنی ادبھت وستو ہے, ان کی گناولی سننے کی چیشٹا کرے گا اور جیسے بھگوت گنوں کو سمن کرے گا ان گنوں میں ان کا چت آسک ہوتا جائے گا, اور وہ آسکتی اتروتر لولیہ میں پریورتت ہو جائے گی, اور تت لولیہ ایکل مولیہ. یہ ہے سداچار. رکھ بات کہتے ہیں ان بھکتی کے لیے لولیہ جو لوبھ ہے وہی ایک ماتر مولیہ ہے. یہ سداچار ہے وشنو کے لیے, وہ نرمان ہوتا ہے ایسے چریتروں کے دوارا. تو کئی چریتر جو راجاؤں کا دیا گیا ہے وہ پارمارتھم نتو وچو وبھوتی, یہ وانی ولاس ماتر نہیں ہے, واگ ولاس نہیں ہے, یہ پرمارتھ بھوت وستو ہے, انیتھا بھاگوتم میں کیوں رکھی جاتی تھی. چکری ٹھاکر بہت سندر ویاکھیا کی ہے, ہم کو بہت اچھا لگا پاٹھ کر کے. تو یہ جتنے بھی چریتر ورنن ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے. آئیے آج کے مول شلوک میں دیکھیے, ابھی بہت کچھ باتیں آئی ہیں بتانا رہ جاتا ہے, جو شلوک وائز آتے ہیں ان میں کم سے کم دیو میں سب دھنو لینا چاہیے تھا لیکن اب اپکرم یہ ہے کہ ان ورنن میں یہاں ایک دم نکتر جہاں بھگوان کا بالکل ان کے انوچر جن نتیہ پارشد کوئی لوگ آئے ہوئے ہیں اس پل کا ویاکھیا یا اسی کے نکتر یہ دیو مند ست دھنو کرت ور میں تک ستا دیو مند سدست ماریسا نام پتنی ابھوت کہتے ہیں ریتک ویکتی کے سوت ہوئے دیو مند ست دھنو کتور میٹی تت سوتا تین پتر کا نام ورنن ہے یہاں ان دیو مند سے کہتے ہیں سرسین نامک ایک کمار پرگٹ ہوا اور ان کے پتنی کا نام ماریشا تھا جنیاماس دس پتران اور کلمشان انہوں نے دس پتروں کو جنم دیا ان ماریشا کے گرب سے اور وہ کیسے تھے اکلمشان پنڈوان اتنت پنڈوان کلمش مانے پاپ اکلمشان وسدیوم دیو بھاگم دیو سروس سمانکم سنجیم شامکم کنکم سمکم اور وتکم وریکم دیوت دمبیو ندر آنکا جس جنم بھی جنم نہیں یہ دس پتر کا نام گناتے ہیں ان میں سے وہ کہتے ہیں دس کا نام ہے کیا تو بولتے ہیں وسدیو اور کہتے دیو بھاگم دیو سوس اور سنجے شامک کنک سمیک وتکم وریکم اور اس میں سے خاص ان کے لیے لکھا گیا کہ دیو دمبیو ندر آنکا جس جنمنی اور جن کے جنم کے پرو پر دیوتاؤں کی ان ددمبی نامک نگارے اپنے آپ بجنے لگے تھے اپنے کوئی بجایا نہیں تھا اپنے آپ بجنا چالو کیا تھا ایسے وسدیو وسدیوم ہرے سانم ودنتیا آنک دندبی ان کہتے وسدیو کے جنم پر ان ددمبیا بجنے لگی تھی دیوتاؤں کے نگارے اپنے آپ بجنے لگے تھے اور پرستات شت دیواچ شت کیتی شت سبا تو ان کی کنیاؤں کا نام راجادی دیوی اور چیتسا بھگنی یت کنیا کا کرتے سکر پیتا سر یا پتر ش پیتا ادداد یہاں انکرم اپکرم آتا ہے آج کے سلوک کا اپکرم یہاں ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ جو ان کے ساتھ ان کی کچھ کنیائیں تھیں ان کنیاؤں کا نام اگر کہتے ہیں کہ ان میں ایک کنتی تھی اچھا کنتی کا نام پہلے پریتھا تھا کنتی نہیں تھا تو ان کے ایک کنتی نامک راجا ان کے متر تھا ان کے پتا کا متر تھا سرسین کا تو وہ ان کو دی گئی کیونکہ ان کو کوئی پتر نہیں تھا اس لیے اپنے متر کو وہ بڑی پتری کنتی وہاں پر دی گئی اور وہاں کنتی بھوج کے پاس وہ پلنے لگی تو کہتے تب دیووں پر اپاگتم دیوم بکش ساپ درواسو ودیام دیووتیم پرتوشیتات اور وہاں انہوں نے کنتی بھوج کے وہاں مہاراج کنتی بھوج کے وہاں انہوں نے ان دیوہوتی ودیا کو پراپت کیا تھا گھٹنا کچھ اس پرکار ہے کہ وہاں ان کنتی بھوج مہان بھگوان کے بھکت تھے وہاں نارد جی بھی ان کے یہاں گیا سنائی پڑا ہے کیونکہ کنتی جی بچپن سے بھگوان کی کتھاؤں کا سمن کیے تھے اسی لیے سمد بھاگوتم میں پرتھم پروچن اگر رکھا گیا تو یہ مہان تتو ویتا مہیلا کا پروچن ہے ان مہتتو بھگوان شری کرشن کے وشے میں بہت سندر جانکاری ان کے پاس کیسے تھی وہ کنتی بھوج کے پاس وہ رہتی تھی اور مہاراج کنتی بھوج کی سبھا میں بڑے بڑے بھگوان کے بھکت ایون نارد جی بھی آتے تھے اور کرشن کتھاؤں کا گان کرتے تھے یہ کرشن کے اوتین ہونے سے پورو کیونکہ کرشن کتھا شاشوت ہے بھگوان بارمبار اوتار لیتے ہیں لیکن وہ کتھا سدیو گائی جاتی ہے نارد اتیادی کے ان مہان پربھوتی کے دوارا وہ کتھاؤں کا پرچار پرسار ہمیشہ سدیو چلتا رہتا تو کنتی جی وہاں سمن کرتی تھی بھگوان کے وشے میں اور اسی لیے وہ وستو تو وہ بھگوت پارشد ہے نتیہ پارشد ہے یہ بھی ہے لیکن وہ سمن بھی کرتی تھی کرشن کتھا کا तो वहां पर एक दिन दुर्वासा जी आए और इसको दुर्वासा की सेवा में प्रयुक्त किया गया राजा के द्वारा। तो जब दुर्वासा की सेवा में वो रही और इतनी वो एक्सपर्ट थी उनका कुकिंग इत्यादि इतना सुंदर था, तो दुर्वासा जी को खिलाती रही, उनकी सेवा करती रही। और कहते दुर्वासा जी ने उनको आशीर्वाद देते हुए एक विद्या दिया जिस विद्या का नाम देवहूतिम विद्या, देवाहूतिम, देवम आहूतिम, देवों को बुलाने वाली खींच करके वो विद्या प्रदान की गई। उन दुर्वासा ने खुश होकर के उनके ऊपर प्रसन्न होकर के उन कुंती जी को दिया। तो तच्चा विपद्य परीक्षार्थम आजुहार रविम सूची, एक दिन पवित्र होकर के उन विद्या का उच्चारण करने लगी उनकी परीक्षा के लिए कुंती जी, स्नान मान करके शुद्ध होकर के उन विद्या का जप करने लगी जो मंत्र सिखाए थे, उन मंत्र जप करने लगी। और जैसे मंत्र जप हुआ और उन्होंने विचार किया सूर्य का, तो तुरंत उन सूर्य गोलक से उन सूर्य देवता उपस्थित हुए, विवस्वान जी। हाँ, उस टाइम विवस्वान जी चालू थे, अभी वर्तमान में जो है विवस्वान, वो उतरे तुरंत और कुंती के सामने प्रगटित हो गए। वहां जाओ टेरेस वेरेस में करती होगी पता नहीं कहा, तो वो वहां पर सामने सूर्य देव आकर के एकदम खड़े हो गए। तद देवो उपागतम देव विक्षम विस्मित मनसा, जब सूर्यदेव आए तो उनको देख करके अत्यंत चकित हो गई, बोले पावरफुल विद्या है। कुंती जी ने सोचा वस्तु तो ये सब भगवान की योजना है, क्योंकि भविष्य में कुंती के ऊपर बहुत दुख आएगा और कोई भी पुत्र दिए बिना उनकी पति चल बसेंगे और आगे भगवत भक्तों का अवतार होना है। इन सब को लक्ष्य करके दैव निर्मित ये घटना है। तो जब प्रकटित हो गए तो अत्यंत विस्मित होकर के देखने लगी, वीक्ष देवम उन सूर्य देव को वो देखने लगी। और प्रत्यार्थम प्रयुक्ता में या ही देव क्षमस्व में, और जब वो थोड़ा उन चमत्कार से बाहर हुआ हृदय उनका कुंती जी का, बोले इतने बड़े देवता मेरे सामने खड़े, बोले सॉरी सॉरी क्षमा कीजिए। तो सूर्यदेव तो इसे जिज्ञासा में क्यों बुलाया, आह्वान किया, तो सूर्यदेव बोले क्या काम है मेरा, क्यों बुलाया ये विद्या से, वो तो प्रतीक्षा में रखते। बोले प्रत्यार्थम प्रयुक्त, आप जाइए, कोई काम नहीं है। अब इतने बड़े देवता आए हैं, वो घबरा गई एकांत में एक युवती के साथ, इतने बड़े देवता पहले से घबरा गई कुंती जी। बोलते जाइए महाराज, क्षमा कीजिए आप जाइए। बोले मैं तो प्रत्यार्थम प्रयुक्ता, ये जो विद्या का मैंने श्लोक पाठ किया था उनकी परीक्षा अर्थ किया था, वो परीक्षा पूरी हो गई और क्षमस्व, अब मेरे अपराध क्षमा कीजिए, आपको वहां से दौड़कर आना पड़ा उसीलिए क्षमा कीजिए, बस आप जाइए। तब सूर्यदेव बोलते अमोघम देव संदर्शम आदित स्वच्छात्मज, बोलते देखो जब मैं आया हूं तो देवता का दर्शन निष्फल नहीं जाएगा, उसमें भी हमारा दर्शन निष्फल जाए, कोई मामूली देवता का नहीं जाता, मैं तो सूर्यदेव हूं। कहने का अर्थ है कोई सामान्य देवता का दर्शन मनुष्य के लिए निष्फल नहीं जाएगा, वो कुछ ना कुछ वो देवता दे करके जाते। मनुष्य जैसा नहीं है किसके घर में जाए खाली हाथ जाए और खाकर खाली हाथ हरे कृष्णा, ऐसा बात नहीं है। देवता लोग महान है, जिस किसके पास जाते हैं ऐसा सुना जाता है कि वो मुदगल का बनाया हुआ महाराज, मुदगल का पुछलोन सुमति धर्मा, मुदगलो नाम मुनि, महाभारत में कथा है कि एक मुदगल नामक मुनि थे, वो मुनि के यहां उनका 1.5 किलो चावल खाने के लिए देवताओं की लाइन लग जाती थी, लाइन क्यों, क्योंकि इसमें एक भी पाप वृत्ति से पैसा कमाया हुआ नहीं था, वो छिलोंस वृत्ति से जीविका चला रहे थे। छिलोंस वृत्ति का पक्षी वृत्ति, जैसे दाना चुनना खेत में से, एक वित्तीय चुलंस धर्म वर्णन है। इन धर्मों का वर्णन सातवें स्कंद में युधिष्ठिर महाराज को बता रहे नारद मुनि 15वें अध्याय में इस सब धर्मों का वर्णन चुलंस धर्म लिखा है। तो उसमें मंडी में से अनाज की मंडी या खेत काटने के बाद जो गिरे हुए अन्न के बीज है वो एकत्रित करना होता, वो 15 दिन एकत्रित करते थे। 15 दिन में 1.5 किलो चावल या 1.5-2 किलो गेहूं वो एकत्रित कर पाते थे। उनके बाद घर में आकर के उनका रंधन करते थे और रंधन करके देवताओं को भोग लगाते थे। और जब देवताओं को भोग लगाता था पहले से दरवाजे लाइन थी देवताओं की, भोग क्या वो लोग लाइन में खड़े रह जाते थे और ये महापुण्यात्मा है ये भी पाप नहीं किया है, है? और वो लोग लाइन से बैठ जाते थे और वो 1.5 किलो चावल में सभी देवता संतुष्ट हो जाते थे और संतुष्ट होकर के उनका हजारों गुना दे देते थे। और 15 दिन जीविका चलती थी पूरा फैमिली का और तब तक ये मुनि 15 दिन तक 1.5 सेर चावल ये कर लेते थे। और बहुत सारे अभ्यागत भी उनके घर में आकर के खा करके आशीर्वाद देवताओं दिया हुआ वो था। तो मैं कह रहा था कि एक सामान्य देवता का दर्शन भी निष्फल नहीं जाता है मनुष्यों के लिए। जिस प्रकार सज्जन मनुष्यों का दर्शन कुत्ता कर लेता है तो उनका निष्फल नहीं जाता है। एक रोटी टुकड़ा डाल देते हैं ऐसे देवता लोग, रोटी टुकड़ा डाल देते हैं मनुष्य एक टुकड़ा, वो जीभ जेब खाली करके नहीं देंगे, सब कुछ नहीं देंगे, अपने लिए बचा करके रखेंगे, लेकिन कुछ देंगे, अपना विचार करके कुछ देते हैं। तो देवता लोग का दर्शन सफल इसलिए कहते हैं अमोघम देव संदर्शन आदधे। बोले देखो मैं सूर्य देव हूं और कोई कल क्या बोलेगा, क्या कहेगा, अरे कुंती के सामने ठीक है, कुंती तो बोलेगी कि आप जाइए मैं परीक्षा के लिए, लेकिन सूर्य देव होकर के उन्होंने कुछ नहीं दिया, नहीं नहीं मैं दूंगा। और एक स्त्री के लिए बच्चा ही महाधन है संपदा, मैं लेके जाऊंगा बच्चा। बोले यही तो बड़ा लांछन के रूप में होगा महाराज, मैं नहीं चाहती हूँ, क्षमा कीजिए मैं अभी विवाह नहीं किया और आप चिंता का बात नहीं है, व्यवस्था मैं जानता हूँ, देवता लोग सारी व्यवस्था जानते हैं। बोला पूरा व्यवस्था मैं कर दूंगा। तो कहते योनि यथा न दुष्यत, जिस प्रकार तुम्हारी योनि विदीर्ण न हो उसी प्रकार मैं तुमको पुत्र दूंगा। प्रभुपाद जी लिखते हैं कि इसलिए उनके कान से एक पुत्र का जन्म हुआ, इसलिए उनका नाम कर्ण हुआ, क्योंकि कर्ण से कुंती कर्ण से वो उत्पन्न हुआ था और प्रकट होकर के भी दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी ये बालक उत्पन्न होकर बहुत बड़ा लंबा चौड़ा कान से निकला, लेकिन बाद में बहुत बड़ा हो गया, सूर्य पुत्र था ना। लेकिन कुंती जी घबरा गई, इसको कहां डाले बच्चे को, ये घबरा गई। आगे उनका कथा आएगा तो ये यही अर्थ है, योनिर यथा न दूषित करता अहम ते सु मध्यमा, मैं उसकी व्यवस्था करूंगा ये मध्यमा, अतः सुंदरी तुम उनकी चिंता मत करो, बाकी तुम पुत्र ले लो, कल कोई बोलेगा कि सूर्य ने प्रसन्न होकर के कुछ नहीं दिया, ऐसा हुआ नहीं है कभी, तो यही पर कथा विराम देते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 चंद्रा श्रीमद भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गिरिधारी भगवान की जय, राय गौर हरि विमानंदे अंशाकलपतनुश्रीवासुदेव।